बंदा उससे उपाध नहीं हो सकती। अगर वो फर्द कैसा है जो आकर इस करबला के वाकये को देखता है और देखने के बाद उसकी स्टडी करता है, मुताला करता है, मुताला करने के बाद नतीजा लेता है कि इस दास्तान का मकसद क्या था, हकीकत क्या है, तवज्जो या नहीं। तो ये अर्ज कर रहा हूँ, ये आईने के जो है ना दिमाग की वो जो लग जाती है तो फिर देखने में भी ऐसे आता है जैसा वो दिमाग में ऐनक लगी हो। वो ऐनक असल ये है, जिस तरह से आप लगाओ उसको, मैं अर्ज करूँगा आपको मतलब मुझे आप अच्छा समझें, अच्छा समझें तो मेरा बैठना आपको अच्छा लगेगा, ये मेरा तस्वीर पकड़ना मुझे अच्छा आपका अच्छा लगेगा, तो देखो कैसा अच्छा बैठा है, कैसा मेंबर से, कैसा नूरानी चेहरा है, अम्मा अम्मा कैसा है, दाढ़ी कैसी, सब की बेतारीफ होती रहेगी। अब वही मैं हूँ, अगर उससे नफरत हो जाए तो फिर कहो कि मुनाफिकों की तरह ये तो तस्वीर पकड़ता है, दाढ़ी रखता है, देखो तो सही शक्ल तो देखो कैसी है, अबा रखे बैठा है, हमको धोखे देता है, पता नहीं क्या 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 बातें बन जाएंगी। क्या हुआ, असल जहन के सोच और नजरिए और फिक्र पर जब वो एक ऐनक आ जाती है ना तो आंखें उसी अंदाज से फिर देखती हैं, फिर दिमाग भी वही जाता है और बोलता भी उसी अंदाज से। मेरे साथ है, पता नहीं नाराज बैठे, सलावत पढ़े जरा बाबा से बोला, बस हजरात ने कहा। अब देखो जिसकी कोई मारिफती नहीं है तो वो बोलता है ऐसे ही, माज़ल्ला ये हुसैन करबला जो गए थे, मुझे तो शर्म आती है लेकिन कहा हुआ है तो मैं बोलता हूँ, मैं क्या करूँगा। कहते माज़ल्ला ये एक बेअक्ली था, ये बेअक्ली थी हुसैन की। क्यों भाई बेअक्ली थी? कहा कि ये मालूम है कि एक बहुत बड़ी ताकत है और तुम्हारे पास ताकत भी नहीं है, तुम उसके मुकाबले में आते क्यों हो? ये मालूम है नहीं जीत सकते उसे, तुम उसके मुकाबले में आते क्यों हो? अव्वल ये, नंबर दो, जब तुम गए लड़ने के लिए तो ये क्या किया, क्या बच्चे भी ले गए, खवातीन भी ले गई, ये क्या किया? आज तक देखा है कोई बहादुर को मैदान जंग में खवातीन भी ले जाए, बच्चे भी ले जाए, जवान बेटे अर्ज का शिशमा है बच्चे जितने ये ले जाए, ये किसने किया है? अब मैं इसका जवाब क्या दे सकता हूँ आपको? जवाब फकत ये दे सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग पे जो फिक्र है, तुम्हारा जो नजरिया है, तुम्हारे ऐनक जो है उसने हुसैन को पहचाना ही नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? तुम खुद पागल हो तो इधर जाइए तुम ऐसी बातें करोगे, इसलिए कि तुम खुद हक से दूर हो तुम्हें हक का पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें नूर से दूर हो तुम नूरानियत का पता ही नहीं चलेगा, तुम हुसैन को पहचानो, हुसैन को पहचानने से पहले पैगंबर को पहचानो कि पैगंबर ने हुसैन का क्या तआरुफ कराया है, अल्लाह ने हुसैन का क्या तआरुफ कराया है, वो किस मकाम की शख्सियत है, किस फलसफे और किस नज़रिए के मालिक हैं और उनकी ज़िंदगी कैसी है, तब जाके बातें हो सकती, वरना तो ये इस पागल से क्या बातें करेंगे। सलवात पढ़े जरा बाबा से बोला, ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये जरा कोई बिल्कुल पागल ग्रुप था, जो कि अर्ज कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इस किस्म की बातें करें। फिर एक ग्रुप और है, एक ग्रुप और है, वो भी शख्सियतों को तो नहीं पहचानता, दिमाग उसका ऐसा नहीं है, मारिफतें उसके पास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धीमा सा, थोड़ा सा नीचे, वही अंदाज से कि मसलन अभी जिस तरह हम अभी कहते हैं हमारे सियासी हमारे प्रोग्राम में जब भी होता है, इधर एक पार्टी है, दूसरी इधर पार्टी है, इधर पार्टी है, हमारे लिए तो दोनों बराबर है, ऐसे नहीं है, दो पार्टियां, तीन पार्टियां, जैसे भी अगर इलेक्शन आपके हल्के में होता है, चार पाँच कैंडिडेट हैं, तो भाई हमारे लिए तो सब बराबर है, कोई किसी काम का नहीं, इसी अंदाज से सोचते हैं ना। क्यों? इसलिए कि वो शख्सियतें इस मकाम की हैं, उनको कुछ ना कुछ आप जानते हो और उनके पास सब पे एतमाद नहीं है, सब आदम एतमाद का इजहार करते हो कि किसी पे एतमाद नहीं है, तो एक आदमी गरीब आदमी भी दूसरों के लिए इस किस्म की बातें करता है। कुछ इस किस्म के लोग हैं, वो कहते हैं कि अरे भाई एक जंग थी, सियासी जंग थी, یا دوسرے لفظوں میں کہ دو شہزادے تھے، ان کی جنگ تھی، ایک طرف یزید تھا ایک طرف حسین تھا، یزید جیت گیا حسین ہار گیا، بات اور کیا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں اس مقام پہ پھر بھی اس بندے خدا کو شخصیت حسین علیہ السلام اس کی معرفت نہیں ہے، دعوت حسین پہ پڑھائی نہیں ہے، یزید جو پروگرام بنا رہا ہے اس کا عرض کر رہا ہوں اسٹڈی نہیں ہے، بغیر اسٹڈی کے آ کر کتابیں لکھتے اور کتابیں لکھنے کے بعد الٹی سیدھی باتیں آگے کرتے، تو کم از کم دیکھو وہ لائن کیا ہے یزید کی، حسین کی لائن کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اس کو ٹیلی کرو، ان کو ملاؤ، اس کے بعد پوچھو یہ پروگرام اس کا تھا، یہ پروگرام اس کا تھا، تو پھر ایک انصاف کی بات ہے، لیکن تم نے تو پڑھائی کچھ نہیں، تم نے ایک ایسے جس طرح سے ہمارے پاس عرض کر رہا بغیر پہچانے چند کینڈیڈیٹ ہوئے، سب کو کہتے بھائی بھائی ہمارے لیے تو سب برابر ہے، ان کے بیچ میں کوئی اچھا بھی ہو جائے گا وہ بھی روتا جائے گا، اب اس کو بھی نیچے کر لو، اس کو لفٹ نہیں دے کیونکہ نہیں پڑھا آپ نے، سلام پڑھ کر باب واضح تھک تو نہیں ہے نا، تھک تو نہیں ہے نا، یہ دو. تیسرا عرض کر رہا ہوں کہ وہ گروہ ہے جو مرید ہے دوسرے لفظ میں، دوسرے لفظ میں دیکھو مولائی ہے، اور وہ مولائی ہے، اب مولائی جو گڑبڑ کرے یہاں اندر چلتا ہے، دشمن اگر کوئی گڑبڑ کرے تو دشمن تو دشمن ہے، لیکن اگر کوئی مولائی گڑبڑ کرے یہاں اندر چلتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ کیسے مولائی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام گئے تھے ہم کو بخشوانے کے لیے، بس وہ شہید ہوئے اور ہم بخش دیے گئے، توجہ ہے یا نہیں؟ امت کو بخشوانے کے لیے حسین گئے تھے، پتا نہیں سن رہے میری بات یا نہیں، یعنی ناراض ہو کے سن رہے میرے خیال میں میں غلط پڑھ رہا ہوں، امت کو بخشوانے گئے تھے، توجہ ہے یا نہیں؟ بس اب امت بخش دی گئی، یہ امت بخش دی گئی تو اب عرض کر رہا ہوں کہ پروگرام اور تو کچھ ہے ہی نہیں، پروگرام وہاں ختم ہو گیا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ، پتہ نہیں یہ مولائی کیا کہہ رہے ہیں، امت کو بخشوانے گئے تھے حسین مارے گئے بس امت بخش دی گئی، تو کیا کہہ رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں یا نہیں، کیا کہہ رہے ہیں یہ، سمجھ رہے ہیں یا نہیں، کیا کہہ رہے ہیں یہ، نہیں 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 نہیں، یہ دوسرا اس نے توحید کا انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا، امامت کا انکار کر دیا، کیونکہ امت بخش دی گئی کربلا کے بعد، اس کے بعد کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، کیا کسی امام کی ضرورت ہے پھر، جب بخش دیے گئے تو امام کی کیا ضرورت ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ پاگل کہہ رہا ہے کہ تمام اماموں کا انکار، ہمارے پاس شیش امام ہی تو ہیں، لیکن یہ ہمارے پاس قدرت تیسرا امام کے علی حسن حسین، اور یہ آگے کہتا ہے آگے کوئی امام ہی نہیں ہے، نہیں کہتا مہدی سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں رہا اس کا، کیوں، اس لیے کہ امت بخش دی گئی، اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی گائیڈنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی امامت کی ضرورت، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، جبکہ پیغمبر فرما رہے من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقط مات میتت الجاہلیہ، جو مرے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت، میرے ساتھ ہو یا نہیں، وہ کیا مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے، کیا یہ نہیں، ہر امام کو نائب رسول سمجھو، میرے ساتھ ہو یا نہیں، ہر امام کو کیا سمجھو، جس طرح نبی سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، اور جہاں آ کر امام کو آپ نے نہیں پہچانا، سمجھو پیغمبر سے پہلے زمانے جاہلیت کے آدمی ہو، پیغمبر کا زمانہ ہی تم نے نہیں دیکھا، یار آپ لوگ صلوات نہیں پڑھتے، یہ باتیں جو کر رہے ہیں، جب اس کو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب امام کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں، ہم جو اب خاتم النبیین کہتے ہیں اس کی معنی کیا کرتے ہیں، تھک گئے
اچھا اب یہ بندہ خدا جو کہتا ہے کہ بس بخش دیا گئے کربلا کے بعد, کربلا کا کام ہی اتنا تھا وہ ہو گیا, اب اس کے بعد راہ ہدایت بند ہو گئی, آپ کو ضرورت ہی نہیں کیونکہ آپ کو اچھے کام کرنے نہیں ہیں, نہیں اچھے کام تو کرنے ہی نہیں ہیں, اب بخش دیے گئے چاہے برے کام کریں چاہے جو بھی کریں ہم تو بخش دیے گئے. اچھا پھر امت میں کون ہے, میرے ساتھ ہے یا نہیں, آپ میرے ساتھ ہیں, امت میں کون ہے, کون ہے, یہ تم مولائی ہو یا غیر مولائی بھی, جو کلمہ پڑھنے والے وہ بھی ہیں, اب ان کو امت میں ہونے کی ضرورت کیا ہے, کیا ضرورت ہے امت میں ہونے کی, کیا ضرورت ہے ابھی کلمہ پڑھنے کی, کلمہ بھی نہیں پڑھو, نعرہ حیدری بھی نہیں لگاؤ, یا حسین بھی نہیں کرو, ماتم بھی نہیں کرو, کیوں کرتے ہو, جب بخش دیا گیا کیا چیز ہے یہ, تمام دروازے کاموں کے سب بند کر دو, نبوت کا انکار کر دو, توحید کا انکار کر دو ہم تو بخش دیے گئے, امامت کا انکار کر دو ہم تو بخش دیے گئے, سب بخش دیے گئے. آیا اس قسم کا فلسفہ دماغ میں آتا ہے آپ کو کہ یہ آئے امت کو بخشوانے, میننگ یہ, اب اگر یہ ہے قول ایسا امت کو بخشوانے آئے تھے, اگر میں یہ کہوں میں روٹی لایا ہوں تم کو سیر کرنے کے لیے تو کھاؤ گے نہیں, کیا میں روٹی لایا ہوں تم کو سیر کرنے کے لیے تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے, اور یہ روٹی لایا ہوں بس کافی ہو گئی, اب تم کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں پانی ہلایا ہوں تم کو سیراب کرنے کے لیے, آیا پھر پانی پینے کی تم کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, میرے ساتھ ہے یا نہیں. حسین کربلا میں آئے امت کو بھلائیوں کی ذریعے بخشوانے کے لیے, سلوات نہیں پڑھتے آپ لوگ ایسے, بس بس ختم, میں موضوع ختم کر دیتا ہوں, بس ابھی آپ لوگ نہیں سنتے نا اس لیے بس. یہ الٹی سیدھی باتیں جو آپ میری باتیں نہیں سننا چاہتے اس وجہ سے میں ان بات کو چھوڑتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. تمام باتوں میں فقط ایک کوتاہی رہ گئی, وہ کوتاہی یہ رہ گئی کہ ہم نے خود سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام سے نہیں پوچھا کہ مولا حسین آپ کربلا کیوں گئے, توجہ یا نہیں, بس ان سے پوچھ لیتے ان کا ہدف معلوم ہو جاتا ہے, شاید اس مجلس کا مقصد بھی پورا ہو جائے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الا ترون, دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جن پہ دلیل قائم کرنی پڑتی ہے, کچھ ایسی چیزیں واضح ہیں کہ جن کے لیے دلیل قائم نہیں کرنی پڑتی. اگر تم سے کوئی پوچھے جوادی کہاں ہے, وہ دیکھ تو نہیں وہ ممبر پہ بیٹھا ہے, لیکن نہیں بول رہے اس میں دلیل قائم کی ضرورت ہے, نہیں دلیل کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے. تو امام حسین علیہ السلام لفظ الا سے شروع کرتے ہیں, الا ترون یا حسین آپ کربلا کیوں گئے, آپ نے کربلا کیوں بنائی, کیا فرماتے الا ترون نہیں دیکھتے, جس طرح تم کو نہیں دیکھتے جوادی بیٹھا ہے ممبر پہ امام حسین علیہ السلام, الا ترون تم دیکھ نہیں رہے, یا حسین کیا دیکھ رہے, ان الحق لا یؤمن بہ, حق پہ عمل نہیں ہو رہا, والباطل لا یتناہى عنہ, باطل سے بچا نہیں جا رہا, میرے ساتھ ہے یا نہیں, حق پہ عمل نہیں ہو رہا باطل سے بچا نہیں جا رہا. تو اب کیا ہوا پروگرام, یہاں سے کیا ہوا پروگرام, کیا ہوا امام حسین علیہ السلام کا حق پہ عمل کرانا باطل سے بچانا پروگرام حسینی ہے, توجہ یا نہیں, حق پہ عمل کرانا باطل سے بچانا تم کو پروگرام حسینی ہے. آگے میرے ساتھ ہے یا نہیں, اب امام حسین علیہ السلام کون تھے, اگر میرے ساتھ رہے تو میں آپ سے بات کروں, کون تھے امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام ایک عرب کے رہنے والے فرد تھے, مدینہ میں رہنے والا ایک عرب تھے, ایک दूसरा क्या थे? दूसरा हुसैन इब्ने अली थे। तवज्जो या नहीं? बेटे थे किसके? अली के। तीसरा हुसैन इब्ने फातिमा, फातिमा के बेटे थे। कितनी हैसियतें हुई हुसैन में? हुसैन एक इंसान है, हुसैन अरब का आदमी है, हुसैन इब्ने अली है, हुसैन इब्ने फातिमा है, हुसैन इब्ने मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तवज्जो या नहीं है? और भी हैसियतें। हुसैन एक मुसलमान है, हुसैन एक मोमिन है, हुसैन एक इमाम है। कितनी हैसियतें हो गई? और भी अगर हैसियत है तो हिसाब लगा ले। तमाम ये हैसियतें हैं। आप जब यहां आते हो या आजादारी करने, तो किस हैसियत से आते हो? जब जाब के लिए जाते हो तो किस हैसियत से जाते हो? हमें बहुत सारी हैसियतें हैं। जिस हैसियत से यहां आते हो उस हैसियत से जाब पे नहीं जाते, जिस हैसियत से जाब पे जाते हो उस हैसियत से यहां नहीं आते। तो एक हैसियत से जाना होता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला गए, किस हैसियत से गए? तवज्जो नहीं, एक इमाम की हैसियत से गए, फरजंदे अली की हैसियत से गए, फरजंदे जहरा की हैसियत से गए, फरजंदे पैगंबर की हैसियत से गए, पैगंबर की इंसान की हैसियत से गए, एक मुसलमान की हैसियत से गए। तवज्जो या नहीं? एक अरब के इंसान के, अरब का आदमी होने के, अरब होने की हैसियत से गए, किस हैसियत से गए? पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, किस हैसियत से गए? अब मैं, आप कह रहे हैं ना मेहमान परवरदी उनको, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौल मैंने पढ़ा, मैं वहां से नतीजा लेने चाहता हूँ किस हैसियत से गए। अला तरौना अन अल हक ला युमन बे, मोमिन हो नहीं हो तुम? हो ना, तो तवज्जो तो दो ना फिर, मोमिन हो जरा तवज्जो दो। अला तरौना अन अल हक ला युमन बे, ये तुम नहीं देखते हक पे अमल नहीं हो रहा? वल बातिल ला युतनाहान, बातिल से बचा नहीं जा रहा। अच्छा, फिर जब हक पे अमल न हो और बातिल से बचा हो, तो उस वक्त इमाम क्या फरमाते? ले यरगबल मोमिन, मेरे साथ तवज्जो नहीं दिया आपने फिर, ले यरगबल मोमिन, उस वक्त मोमिन पर फर्ज है। ये नहीं फरमाते इमाम पर फर्ज है, ये नहीं फरमाते मुसलमान पर फर्ज है, बल्कि एक मोमिन फर्ज है। लिखा रब ही मुहिका, उस पर हक है, वाजिब है कि वह शहादत के लिए तैयार हो जाए। तो करबला हुसैन गए हैं एक मोमिन की हैसियत से, और ये लफ्ज बोल के मोमिनों को फर्ज बता दिया। ओ मुझको मानने वालों, ओ हुसैनियो, मेरा मैसेज और पैगाम तुम्हारे पास है। जब हक पे अमल न हो रहा हो और बातिल से बचा न जा रहा हो, उस वक्त बातिल से टकरा कर बातिल को खत्म कर, हुसैनियत को जिंदा करना मेरी शियत की दलील है और मैं मोमिन होने की दलील है। सलावत पढ़े जरा बाबा से। बहरहाल अर्ज कर रहा हूं कि सैयद शहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हक पे अमल नहीं हो रहा और बातिल से नहीं बचा जा रहा, तो इस अमल के लिए एक आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है ना, वो नक्शा बनाता है। जब नक्शा बनाता है तो मुझ जैसे आदमी को लकीरें समझ में नहीं आती, लेकिन जब इमारत खड़ी हो जाती है तब समझते हैं कि ये रूम क्यों बना है, ये हाल क्या है, ये क्या है, तब जाके समझ में आता है। बस मैं भी ये कहूँ कि अब भले बत्ती बंद कर दिया, बल्कि मैं तो यही कहूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक माहिर आर्किटेक्ट की तरह, एक इंजीनियर की तरह एक नक्शा उन्होंने बनाया, और उस नक्शे में खुद चले, उसके नक्शे में अब्बास चले, उस नक्शे में कासिम चले, उस नक्शे में अली अकबर चले, उस नक्शे में ज़ैनब चली, उस नक्शे में कुलसूम चली, उस नक्शे में सकीना चली। ये मुकद्दरात इस्मत, यहां आपको मालूम नहीं होगा कि हुसैन क्यों चले, आपको ये मालूम नहीं होगा हुसैन क्यों चले। इन सब को लेकर हुसैन करबला में आए, और करबला में आशूरा का दिन आ गया। आशूरा का दिन वो आया जब हुसैन ने मुसीबतें उठाई और हुसैन ने वो मुसीबतें उठाई कि दुनिया को बयान करो तभी मर जाओ, दुनिया सुने तो और चीज है लेकिन बयान करे तभी मर जाए। आशूरा का दिन कैसा था, सुबह हुई, अली अकबर ने अजान दी, हुसैन ने नमाज पढ़ी, उसके बाद हुसैन ने जनाजे उठाने शुरू किए। जनाजे उठाते उठाते जब असर का टाइम आया, हुसैन को शहीद कर दिया गया और हुसैन का सर नेजे पे आ गया। ये तो था करबला की शाम तक। अब है शामे गरीबा, अब है शामे गरीबा। अब मैं ये कहूं कि शामे गरीबा गरीबों की है, मुसाफिरों की है, बिचारों की है, लेकिन इसकी सरबरा अब जैनब है। सरबराही अभी भी जैनब को है। अब यहां से जो मुसीबतें हुई हैं इस करबला के आशूरा के दिन, आशूरा के दिन कयामत की घड़ी, हर एक मुसीबत बयान करने से खासिर, प्यासे भूखे बच्चे अल अताश की आवाजें। लेकिन अब हाल यह है कि करबला का मैदान जनाजों से भरा पड़ा हुआ है, एक तरफ जनाजे ही जनाजे हैं और दूसरी तरफ रक्स और मूसीकी का जश्न मनाया जा रहा है। और अफसोस यह है कि अल्लाह अकबर के नारे भी लग रहे हैं। ये एक मंजर है करबला का दर्दनाक। मेरे साथ है या नहीं? अब मर्द हैं, लड़ते हैं, मर जाते हैं, लेकिन दुश्मनी की भी हदें होती हैं, कुछ हुदूद होती हैं लड़ने की मरने की भी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ लड़े, उनका सर तन से जुदा कर दिया और उसका सार नोके नेजा पे भी ले आए। अच्छा, नोके नेजा पे भी ले आए, लेकिन उसके बाद शियो, मैं अब शिमर का या उमर साद का एक नया ऐलान सुनाऊं तुमको, मैं नया ऐलान सुनाऊं। अब यहां से कहते ये इंसान कहां तक पहुंच जाता है, सर तन से जुदा वो नौके सनान पे, तन यहां जख्मी पड़ा हुआ है जो कटा हुआ है, हर जनाजा कोई सालिम नहीं है, लेकिन अब उमर साद ये कहता है मैं यंत दिवाल हुसैन, अब हुसैन के जनाजे पे घोड़े कौन दौड़ाएगा। शियो, हुसैन को प्यासा भी मार दिया गया, हुसैन के बच्चों को प्यासा भी मार दिया गया, वो इनके सर भी काट दिए गए और उसके बाद गुस्लो कफन तो नहीं दिया लेकिन जनाजू को भी पामाल कर दिया। अब 10 आदमी मलऊन उठे, घोड़े दौड़ाए, हुसैन की एक पसली दूसरी तरफ, दूसरे पहलू की पसली दूसरी तरफ गई, जहरा का बेटा पे घोड़े दौड़ रहे हैं। ठहर जाए, आपको दर्दों का पता ही नहीं है। आज आप घर थे ना, आए हो ना, बच्चों को देखा है नहीं? आज आप प्यासे तो नहीं थे ना, पानी तो आपका बंद नहीं हुआ था ना, भूखे तो नहीं थे आप ना? मुबारक हो, तुम पर कोई ऐसी मुसीबत नहीं है, भूख और प्यास की मुसीबत है तब पता चलता है कैसा होता है। उसके बाद बहन के सामने जनाजा भाई का हो तो क्या हाल होता है। ये मनाजिर तसव्वुरात है, जब करे आदमी खुद को मार दे तब भी कम है। ब्रदर, अब क्या हुआ? अब उसके बाद हुसैन का जनाजे को पामाल करने के बाद अब बात खत्म हो गई? अब खत्म हो गई नहीं, खत्म नहीं होती। अब एक नया आर्डर आया, जब हुसैन मैदान में थे ना, उस वक्त बाज यजीदियों ने खैमे पे हमला करना चाहा, तो हुसैन लड़ाई खत्म करके उनको आवाज देकर दे रहे, इल्लम यकुल्लकुम उद्दीन फकूनु अहरारन फी दुनियाकुम। अरे भाई, दीन की बात नहीं है, मुझे नहीं समझते हो, एक अरब मर्द होके आजाद रह के तो जिंदगी करो, ये नामूस पे हमला करना, बच्चों पे हमला करना, ये क्या कर रहे हो। इमाम हुसैन ने रोका था, लेकिन या सैयदुश्शुहदा, आप शहीद हो गए, आपके सात बच्चे भी दूसरे शहीद हो गए, आपके आपके अनसार भी शहीद हो गए। अब उमर साद की तरफ से हुक्म मिला है, खैमू को आग लगा दो, खैमू को लूटो। ओ शियो, ओ सैयदो, ये कार का मकाम है कि जिस वक्त ये फौज अश्किया भागी है और वो बीबिया जो कभी बाहर नहीं निकली, अब एक खेमे से दूसरे खेमे में दूसरे से आग लगती है, आकर जमा होती है। बीबी उम्मे कुलसुम कहती है कि अजीब है, हम डर रहे थे, बड़ी मुसीबत थी, उधर से हम जनाजों को भी नहीं देख सकते थे, हमारे बच्चे भी चीख रहे थे, लेकिन जब ये जालिम आए हैं, खैमू को आग लगाई है और फिर नेजू की अनियों से हमारी चादरें उतार रहे थे, एक नेजा मेरे सर पे लगा और मेरे सर से खून बहने लगा, मैं भागी हुई पहुंची जैनब के पास, वो बहन मेरे सर पे चादर हो गई है, कहा उख्तों के मिसले के मेरी चादर तुमसे पहले चिन चुकी है। ये जुल्म है, कहर है। अब फिर हमीद इब्न मुस्लिम की बात बताता हूँ। अब ये अर्ज कर रहा हूँ, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने देखा कि ये बीबियां लूट रही थी, मैंने देखा पता नहीं क्या है, वो नामानिगार था हमीद इब्न मुस्लिम, वो कहे मैं देख रहा था एक मरतबा, मैंने देखा एक बीमार बेहोश पड़ा हुआ, ये जालिमों ने चादरें छीनते छीनते मेरी तरफ है, तवज्जो है या नहीं, वो एक फर्श पे लेटा हुआ था, वो बीमार, एक जालिम आया और उस फर्श को ऐसे खींचा कि वो बीमार जमीन पे जाके गिरा। ये जालिम क्या है, एक फर्श के लिए एक बीमार की इतनी बेइज्जती और इतनी जसारत उसके साथ, चलो कोई आम आदमी भी होता तब भी कोई ऐसे नहीं करता। ये आग लगी और एक मर्तबा कहता है कि मैंने देखा ज़ैनब गई इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को पकड़ के, अब सुनो शियो, ज़ैनब है फातिमा की बेटी है, सज्जाद को हिला हिला के, सज्जाद वक्त के इमाम हो, अब तेरा हुक्म चलेगा, बताओ हम खवातीन हैं बेपर्दा बाहर निकले या जल के अंदर मर जाए। निकलो बाहर निकलो। अब वो बीबियां जिन्होंने कभी बेपर्दा बाहर गई नहीं थी, ओ शियो आज ज़ैनब, आज कुलसुम बेपर्दा बाहर आई हुई है, बच्चों को संभाले हुए, आज शाम गरीबा क्यों, आज अब्बास नहीं है, अकबर नहीं है, कासिम नहीं है, अकबर नहीं है, आज जालिम ये जसारतें कर रहे हैं। बहुत दर्दनाक मंजर है, दर्दनाक मंजर है। अब मैंने बाज जगह सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, कहते हैं कि शाम हुई और उसके बाद अब इस कैदियों को संभालने वाली ज़ैनब है, वो ज़ैनब जिसको अब्बास संभाल के आए थे, अब यहाँ ज़ैनब संभालती है। ये मंजर है, ज़ैनब कैदियों के पास है और इधर अर्ज कर रहा हूं सरू को काट काट के नेजू पे चढ़ाया जा रहा है, इधर से सरू को नेजे पे चढ़ाया जा रहा है, इधर ज़ैनब को कहा कैदियों को सवार करो, अब ज़ैनब कैदियों को संभाल रही है। ओ बिरादरमान, ज़ैनब किस तरह भाग रही है, रिवायतों में है कि बीबी के करबला में बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, इतने दर्द देखे कि कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, ये रिवायतों में अजीब रिवायत है कि इतने दर्द बीबी ने देखे, कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए वहां। अब ये बीबी दर्द को दिखा के इधर भागती है, इधर भागती है, दुआ करो किसी की बहन ऐसे परेशान ना हो जिस तरह ज़ैनब है। अब ज़ैनब किसको मनाए, बच्चों को मनाए, कैदियों को संभाले, इधर ये मामला चल रहा है और उधर से कैदियों के सर काट काट के नौ के सना पे नेजू पे बुलंद किए जा रहे हैं। अब मैं पता नहीं इस बात को कहूं या नहीं कहूं, मैंने सुना है, वो बात कह दूं मैं आपको, कहते कैदियों के सर गिने गए, गिने गए गिने गए, तो देखा एक कैदी का सर नहीं है। वो बताओ कौन कैदी? वो एक शहीद का सर, कैदी लफ्ज गलत बोल गया, वो तमाम मकतूलीन शहीदा के सर हैं, लेकिन एक शहीद का सर नहीं है। कौन शहीद? कौन शहीद? वो अली असगर का सर नहीं है। तलाश करो, तलाश करो, कहाँ है अली असगर का सर? तलाश किया मैदान करबला में, ढूंढा, अली असगर का सर नहीं मिला। इधर शिमरे लईन ने कहा मैं एक तरीका है मुझे, मैं ढूंढ के देता हूँ, क्या क्या कुछ नेजे वाले मुझे दे दो ताकि मैं उनके जरिए इस जनाजे को ढूंढ सकूं। कहते हैं कि नेजे जमीने करबला में गड़ते गड़ते गए, ओ एक जगह नेजा लगा, असगर का जनाजा निकला। इधर से ये हाल है और उधर से कैदियों को संभाला जा रहा है। अब जब कैदियों को संभाला जा रहा है तो जैनब ने यहाँ गिना, कैदी तो सब तो है लेकिन एक कैदी गुम है, तो जैनब समझ गई ये कैदी गया कहाँ होगा। जैनब भागी हुई मैदान में आई, मैदान में आई क्या देखती है के जनाजे हुसैन पे सज्जाद खड़े हुए हैं। जैनब ने बाजू में हाथ डाला, ए सज्जाद ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी रूह तो कफ़स से उनसुरी से परवाज करने वाली है। सज्जाद ने सर नहीं उठाया बल्कि करवट लेके कहा फूफी अम्मा आप भी आ गई है, आप भी आ गई है, मैं भी आ गई हूँ, हाँ मैं आ गई हूँ। फूफी अम्मा एक मसला तो बताइएगा, जवानों सुनना, एक मसला तो बताइएगा बेटा, पूछो। जवान बेटा हो, सामने बाप का जनाजा पड़ा हुआ हो और बाप को बेटे को ये ताकत ना हो, और ये ताकत ना हो कि बेट बाप का जनाजा दफन कर सके, वो भी वो बताओ ऐसा बेटा मरे या जिए। ये बेटा मरे या जिए। अब जैनब ने क्या कहा? जैनब ने कहा बेटा हक तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं जैनब तुम्हें वादा देती हूँ कि हुसैन की यहाँ बारगाह शिया बनाएंगे और कयामत तक हुसैन हुसैन करते रोते रहेंगे। जैनब ने तुम्हें रोने की दुआएं दी है, लेकिन जब खुद जैनब रोती थी बताए क्या हाल था? जब जैनब रोती थी ताजिया ने लगते थे शिविर की तरफ से, उसको दी चुप रहा चुप रहा। ये ताजिया ने जैनब ने बर्दाश्त किए, ये बहुत दुख है ग्रादरमान, बहुत दुख है, बहुत मुश्किल है, जिसको दर्द है वो समझता है। कहते हैं इमाम सज्जाद अलैहि सलाम जब वापस आए तो खामोश नहीं बैठते थे, रात दिन रोते थे। हतार के बाज जगह ऐसे है कि इमाम सज्जाद के रोने के आंसू से परनाले बहते थे। अब तवज्जो नहीं दे रहे आप, परनाला बहता है आंसू का, परनाला बहता आंसू का, इतना रोए कि रात दिन इमाम सज्जाद रोते थे। मंजर देख चुके थे ना, पामाल शुदा जनाजा तो देख चुके थे, प्यास का हाल तो देख चुके थे। वो तो ये तो हाल तो देखा था। कहा कि आगा आप अगर कितने दिन रोएंगे, आखिर कितने दिन रोएंगे? इमाम सज्जाद फरमाते मुझसे पूछते हो कितने दिन, जब मैंने जनाजे देखे पड़े हुए, पामाल शुदा जनाजे देखे, मैं पानी शुदा पड़ो, वो कितने जनाजे, मैं क्या कहाँ खामोश रह सकता हूँ? तो इमाम सज्जाद का हाल ये था कि उनके सामने पानी दिया जाए रोते थे, खाना दिया जाए रोते थे, बाजार में निकले कहीं अर्ज कर रहा हूँ कसाब कसाई के पास गोश्त है वो ढाक देता था, गोश्त को देख नहीं सकते थे, पानी को देख नहीं सकते थे, खाने को देख नहीं सकते थे, और हर जगह हुसैन को याद कर کرتے تھے, ہر بات میں حسین کو یاد کرتے تھے. ایک دن سجاد نکلے بازار سے جا رہے تھے تو کوئی گوسفند لیے جا رہا ہے. اب میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ آپ نے رونا ہی بند کر دیا, کمال کر دیا. آپ کو رونا نہیں آئے گا معلوم ہے. روئے تو سجاد روئے یا زینب روئے یا ام البنین روئے, آپ کو درد کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو درد کا پتہ ہی نہیں ہے کیسے رویا جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ اب سٹھائی بات تو چھوٹی ہے, وہ گوسفند لیے جا رہا ہے. امام سجاد نے پوچھا, بھائی یہ تو بتائیے گوسفند کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا, قبلہ میں اس کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. اچھا, یہ دمبا ذبح کرنے جا رہے ہو؟ کہ ہاں میں ذبح کرنے جا رہا ہوں. یہ تو بتاؤ اس کو گھاس دی ہے؟ بولا گھاس دی ہے. کہا اس کو پانی دیا ہے؟ کہا پانی دیا, بعد میں ذبح کر رہا ہوں. اگر جانور کو بھی بغیر پانی کھانے کا ذبح تو نہیں کرتے, اتنے تو ہم انسان ہیں. وہ فریاد کر کے کربلا کی طرف رخ کر دے گا, على لعنة الله على القوم الظالمين.
سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا, غریب دیتے ہیں غریب دیتے ہیں فرصت تمہارے پیاروں کا. سلام پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے, کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے, مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر, کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی, نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں, حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں, बुझे जो प्यास तो अशकों के जाम हाजिर हैं। ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी कहाँ पे बैठी हो खैमे को जल गए बीबी बड़ी देर है सवेरे में कहाँ हो शामे गरीबा के घुप अंधेरे में जमीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ बीबी वो सीना जिस पर के सोती थी अब कहाँ बीबी जनाबे मादरे बेशीर को भी सबका सलाम अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का प्याम अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी अभी तो बोती गर्मी न कम हुई होगी नहीं अंधेरों में कुछ सोचता कहाँ ढूंढे तुम्हारा चांद कहाँ छिप गया कहाँ ढूंढे ना इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी तुम्हारी मान भी उजड़ी है कोख भी उजड़ी नहीं लेनों में इंसान कोई खुदा हाफिज दरिंदे और ये बेवारती खुदा हाफिज शरीक के हक के दरूदो सलाम पैगंबर सलाम सैयदे लालाक के लुटे घर पर सलाम मोहसने इस्लाम खस्ता तन लाशो सलाम तुम पे शहीदों के बेकफन लाशो सलाम तुम पर रसूलो बतूल के प्यारो सलाम मेरे शहादत के गिर्द सैयारो बचे जो अगले बरस हम है और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है जो चल बसे तो ये सलाम
आखिर है क्या हुसैन क्या हुसैन क्या हुसैन Y'all say.